अभिमन्यु ने आराम से कहा, अरे हमारे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप रेडी तो है ना? अगर आपको समय लगने वाला है तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। इप्सिता ने झट से कहा, अरे नहीं, हम बिल्कुल रेडी हैं, अब हमें समय नहीं लगेगा, चलिए चलते हैं। इप्सिता इतना बोलकर आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी हाई हील स्लिप हुई और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। अभिमन्यु ने तुरंत एक हाथ से इप्सिता का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर में रखकर उसे संभाला। संभालकर इप्सिता, कहा उसने। गिरने के डर से इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन अभिमन्यु की आवाज़ सुनते ही उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ कसकर थाम लिया। वो अभिमन्यु की आंखों में ही देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की हील्स की तरफ देखते हुए कहा, आपको हील पहनने की आदत नहीं है क्या? इप्सिता ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम पहनते हैं, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, इस वजह से हम स्लिप हो गए। अभिमन्यु ने इप्सिता को ठीक से खड़े होने में मदद की और कहा, खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, चलिए चलते हैं। अभिमन्यु इप्सिता का हाथ पकड़े हुए था। इप्सिता उसके हाथ की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने जल्दी से इप्सिता का हाथ छोड़ते हुए कहा, सॉरी। इप्सिता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई। दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और थोड़ी देर में विला से बाहर निकल गए। अभिमन्यु कार में बैठते ही ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, हमें गर्ल्स हॉस्टल जाना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास वाला, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने कहा, सर अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो आधे घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नंदिनी को मैसेज किया, हम विला से निकल गए हैं, थोड़ी देर में हम अभिमन्यु के साथ हॉस्टल पहुंचते हैं। इप्सिता ने जैसे ही मैसेज किया, अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, नंदिनी से बात कर रही है क्या आप? इप्सिता ने कहा, हमने सोचा उसे मैसेज कर दें। अभिमन्यु भी अपने मोबाइल फोन में किसी को मैसेज कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम से जुड़े किसी से बात कर रहा है। इप्सिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नंदिनी ने इप्सिता का मैसेज देखते ही उसे कॉल किया, इशु तुम अभिमन्यु जीजू के साथ यहाँ हॉस्टल आ रही हो? इप्सिता ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब हम यहाँ मिस्टर अभिमन्यु के साथ हैं तो उनके साथ ही तो आएंगी ना? नंदिनी ने कहा, भूल गई हो क्या, हमारे हॉस्टल की वार्डन कितनी स्ट्रिक्ट है, तुम जीजू को लेकर यहाँ कैसे आ सकती हो, उनकी तो हॉस्टल में एंट्री ही नहीं होगी। इप्सिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, अरे हाँ वार्डन की बात तो भूल ही गई। इप्सिता के सिर पीटने पर अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो एक्चुअली हम भूल ही गए थे, हमारा हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल है और आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सुनकर अभिमन्यु हैरानी से बोला, मतलब? इप्सिता ने समझाते हुए कहा, एक्चुअली हमारे हॉस्टल की वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी लड़के का आना अलाउ नहीं करती। आई नो हम जानते हैं कि आप कुंबरसा है, लेकिन फिर भी आपको अंदर नहीं आने देंगे। इप्सिता को इतना परेशान देखकर अभिमन्यु मुस्कुराया, कोई बात नहीं इप्सिता, इतनी क्यों परेशान हो रही है, यो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हमें तो नंदिनी से मिलना था, आप अपने हॉस्टल जाइए और उन्हें बाहर बुला लीजिए, हम कहीं और चलकर उनसे मिलेंगे, जब तक आप बुलाने जाएंगे तब तक हम यहीं कार में बैठकर उनका वेट कर लेंगे। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और फोन अपने कान के पास लगाते हुए कहा, नंदिनी वो अभिमन्यु। इप्सिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि नंदिनी ने कहा, हाँ ठीक है मैंने सुन ली जीजू की बात, जीजू के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, खैर कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम लोग? इप्सिता ने कहा, यही कोई 10-15 मिनट में। नंदिनी ने कहा, ठीक है मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। इप्सिता ने कहा, और हाँ हमारा एडमिट कार्ड और बाकी का सामान भी रख लेना। नंदिनी ने कहा, हाँ तेरा एडमिट कार्ड और सारा सामान मैंने पहले ही पैक करके रख लिया है, तुम लोग आओ मैं वेट कर रही हूँ। इप्सिता ने कॉल काट दिया। दूसरी तरफ अभिमन्यु के चाचा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अभिमन्यु अचानक कहाँ गया है, वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उन्होंने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, पता करो अभिमन्यु कहाँ है और वो किसके साथ है, और ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो उसे अकेले बिना ऑफिस के किसी स्टाफ के जाना पड़ा, उसने अपनी एक हफ्ते की मीटिंग डिले कर दी और सारा काम इतनी जल्दी में निपटा लिया, आखिर बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे जल्द से जल्द सारी जानकारी चाहिए। अभिमन्यु के चाचा पता करना चाहते थे कि अभिमन्यु कहाँ है और क्या कर रहा है, क्योंकि अभिमन्यु का मुख्य उद्देश्य मुंबई आकर इप्सिता को उसके एग्जाम दिलाना था, वो तो बस काम के बहाने उसे लेकर यहाँ आया था। उसने ये बात ऑफिस में किसी को भी नहीं बताई थी और घर में भी माँ के अलावा किसी से कुछ नहीं कहा था, इसलिए अभिमन्यु के चाचा और चाची को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अब ये जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे कि अभिमन्यु कहाँ है। वहीं अभिमन्यु और इप्सिता जो अभी तक कार में बैठे थे थोड़ी देर बाद सीधे हॉस्टल के बाहर पहुंचे। कार रुकते ही इप्सिता कार में बैठे बैठे ही अपने हॉस्टल की तरफ देखने लगी। इतने दिनों बाद अपने हॉस्टल को देखकर इप्सिता को बहुत अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। इप्सिता की मुस्कान देखकर अभिमन्यु खुश हो गया। इप्सिता जल्दी से कार से बाहर निकलने लगी। अभिमन्यु भी कार से बाहर निकलते हुए बोला, जाइए जल्दी से नंदिनी को बुला लाइए, क्योंकि हमें वेट करना ज्यादा पसंद नहीं है। इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, वेट करना किसी को भी पसंद नहीं होता, हम जानते हैं, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम बस यूं गए और यूं आए। अभिमन्यु इप्सिता के साथ ही खड़ा था। तभी हॉस्टल के बाहर कुछ छोटे बच्चे थे जिनके हाथ में कई फूलों के बूके थे। उन्होंने इप्सिता और अभिमन्यु को हॉस्टल के पास आते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वो दोनों कार से उतरे हैं, तो समझ गए कि वो दोनों अमीर घर से हैं। वो भागते हुए उनके पास आए और उनमें से एक बच्चा अभिमन्यु के पास आकर बोला, भैया भैया प्लीज हमसे ये फूल खरीद लो। अभिमन्यु का ड्राइवर उन बच्चों को देखकर उनके बीच में आते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ यहाँ से। अभिमन्यु ने अपने ड्राइवर को रोकते हुए कहा, रहने दीजिए। फिर बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, नो थैंक्स, हमें ये फूल नहीं चाहिए। इप्सिता हैरानी से देखने लगी, क्योंकि अभिमन्यु बड़े ही प्यार से बच्चों से बात कर रहा था। तभी उन फूल बेच रहे बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, भैया प्लीज खरीद लो ना, हमारी बोनी हो जाएगी और आप भाभी को दे देना। इप्सिता ने ये बात सुनकर हैरानी से बच्चों की तरफ देखा। तभी उनमें से एक बड़े बच्चे ने कहा, हाँ भैया ले लो, भगवान हमेशा आप लोगों की जोड़ी सलामत रखेगा। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया दे। अभिमन्यु ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसे उन बच्चों में बांटते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप लोग ये पैसे लीजिए। बच्चे पैसे लेते ही वहां से चले गए, लेकिन एक छोटी लड़की वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में गुलाब का एक ही बूके था, लाल गुलाबों वाला। वो उसे अभिमन्यु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, भैया ये आप ले लो। अभिमन्यु ने बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अभिमन्यु ने बच्ची को भी पैसे दे दिए और वो बच्ची चली गई। अभिमन्यु के हाथ में लाल गुलाबों का छोटा सा बूके था। क्रमशः